హరి కృష్ణ శ్రీమద్ భాగవతం కెంటో 1 చాప్టర్ నెంబర్ 1 టెక్స్ట్ నెంబర్ 1 పార్ట్ 3 ఇన్ అత్యంత ही శుభ మంగళమయ మంగళాచరణ के शब्दों को जो वेद व्यास जी कर रहे हैं एक बार फिर मेरे साथ उच्चारण कीजिए। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ करने से पहले लिखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोन् वयादितरतश् चाधीष्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुहुयन्ति या सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सुंदर सुंदर बताया। सबसे पहले तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि इस श्लोक में, क्योंकि वेद व्यास जी ने प्रथम नमस्कार वासुदेव के पुत्र वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण को कहा है, तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि जो समस्त वेदों के रचयिता व्यास देव हैं उन्होंने भी यही घोषित किया है। तो हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं अगर हमें समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब हमारी बुद्धि की गलती है, क्योंकि जब समस्त शास्त्रों का लिखने के बाद वेद व्यास जी ने अंतिम शास्त्र अपनी परिपक्व अवस्था में जो लिखा वो है श्रीमद् भागवतम, और उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ से पहले ये घोषित कर लिया है कि भगवान तो कृष्ण ही है, परम सत्य तो कृष्ण ही है जिन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार की उत्पत्ति की रचना की उसके विषय में हमें श्री प्रभुपाद जी ने समझाया और बहुत बहुत उदाहरण दिए, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें भगवान खुद कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतम सूत्रे मयि गण इव, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं उसी प्रकार संपूर्ण जगत मुझ पर ही आश्रित है। इसके आगे हम पढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अनैतिक व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है पहुंच जाते हैं। अब श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, लेकिन सही तरीका क्या है कि हम क्रम से पढ़ें, जैसे हम पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट से क्या करें भगवान की दिव्य नित्य लीलाओं को, जो समझने के अभी हम योग्य ही नहीं है वो हम पढ़ें और इससे और भी अपराध हो पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो अनैतिक व्यक्ति हैं जिनके अंदर बुद्धि ही नहीं है, जो फॉलो नहीं करते अपने गुरु महाराज के आदेश का, वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट से दसम स्कंद के उन 5 अध्यायों में जिनमें भगवान की रासलीला का वर्णन है, अभी हमारी बुद्धि इस योग्य नहीं है और डायरेक्ट से उस रासलीला के प्रसंग को समझ नहीं सकते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसे नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो ले तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से समझ नहीं सकता। यह विषय अत्यंत ही आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमश परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यास देव पाठकों को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आवाहन करते हैं। यह गायत्री मंत्र आध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है, उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तो वह भगवान की दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अतः गायत्री मंत्र के फल जाप के लिए मनुष्य गायत्री मंत्र के सफल जाप के लिए मनुष्य में ब्रह्म जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्णतया सत्वगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम यश गुण आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। महाराज परीक्षित की मृत्यु 7 दिन के बाद होने वाली थी, और उस समय जब बहना श्रुतदेव गोस्वामी ने भागवत महापुराण उन्हें सुनाया, तो इतने थोड़े समय के लिए उनके पास समय था, तो वो क्या कर सकते, डायरेक्ट से भगवान की लीलाएं सुनाते ना। इतना सब कुछ शुरू में 9 स्कंद उन्होंने बताया, क्योंकि डायरेक्ट से सुनने की योग्यता नहीं है हमारे पास। इसलिए हमको पहले ये जो पहले श्लोक का लास्ट शब्द है ना, सत्यम परम धीमहि, यह धीमहि शब्द गायत्री मंत्र में भी आया। जैसे गायत्री मंत्र में होता है ना, ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि के, उस उन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही उच्चारण करके श्री वेदव्यास जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार आप आहिस्ता आहिस्ता स्वच्छ होते हो ना, जैसे ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, उसके बाद गायत्री, यहाँ पर लिखा अतः गायत्री मंत्र के सफल जाप के लिए मनुष्य में ब्रह्म जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए। फिर इस तरह से जब आप ब्रह्म स्थिति पर पहुंच जाते हो, और फिर उसे पूर्णता सत्वगुणी होना चाहिए, फिर वह बाद में सत्वगुण शुद्ध सात्व में आता है, तभी वह भगवान की, फिर जब इस स्थिति पर पहुंच जाते हो आप, फिर आप भगवान के गुण यश लीलाओं को दिव्य अनुभूति को समझ सकते हो। डायरेक्ट से एक नया भक्त जो है वो श्रीमद् भगवत गीता भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की गुह्य लीलाओं को नहीं समझ सकता, बल्कि और भी अपराध करेगा तो और भी भक्ति से नीचे गिर जाएगा। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंग शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंग शक्ति से भिन्न है। अब श्रीमद् भागवत में भगवान की अंतरंग शक्ति के विषय में बताया गया, लेकिन क्योंकि हम लोग हमारे अनुभव गम्य दृश्य, यानी कि हमारी बुद्धि कहाँ तक जाती है, भगवान की बहिरंग शक्ति जो ये संसार के, क्योंकि उसमें परम रस है जो 10वां स्कंद है ना, और उसमें क्या है, दिव्य है सब कुछ, और हमारी अक्कल कहाँ तक काम करती है, सिर्फ जो भौतिक है। अब प्रेम और लस्ट में फर्क तो समझ में आता नहीं है, और फिर डायरेक्ट से चले जाते हैं भगवान की दिव्य लीलाओं का स्वादन करने के लिए, तो क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत भौतिक है ना, फिर जो भी स्टोरी हम सुनते हैं तो उसमें हम उस स्टोरी को का कोई कैरेक्टर हम अपने आप को समझते हैं। एक सिंपल सी बात है, एक ना कथा चल रही थी, तो एक भगत जो है ना वो कथा कर रहे थे, तो उसमें श्री राम और दशरथ जी का जो वियोग है ना, उसके विषय में पढ़ रहे। जब श्री राम को वनवास जा रहा था, वनवास के लिए जा रहे थे, तो दशरथ महाराज बहुत रो रहे थे, बोल रहे थे आप जा नहीं रहे हो, मेरे प्राण निकाल के जा रहे हो, इस तरह से बहुत विलाप कर रहे थे। तो एक कथा में जो है ना व्यक्ति बैठे हुए थे, वो सुने जा रहे हैं रोए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं रोए जा रहे हैं, उनके अश्रु रुक नहीं रहे। तो जो कथाकार थे वो समझे कि देखो कितना आनंद से कथा सुन रहा है, कितना उसको आनंद आ रहा है कथा का। तो जब कथा खत्म हुई तो उनके चरणों में प्रणाम किया, बोला आप मैं कथा करके भी इतना आनंदित नहीं हो रहा था जितना मैं आपको देख कर हो रहा था, कि आपके अंदर कितना प्रेम है श्री राम के प्रति और ये आपके अंदर कितने दिव्य विकार उत्पन्न हो रहे थे, आप रो रहे थे। तो उसने बोला कि नहीं मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं लेकिन श्री राम के वियोग की स्टोरी सुनकर नहीं रो रहा था, मुझे मेरी अपने बेटे की वियोग के बारे में याद है, वो भी मुझे छोड़कर अमेरिका चला गया, तो मैं ना इस बात को याद करके रो रहा था। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को देखते हैं, जो प्रेम लीला होती है वो उसमें हम अपने आप को या कोई कैरेक्टर समझ लेते या जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं उसी तरह से हम लोगों को लगता है कृष्ण ने गोपियों के साथ किया। तो इतना अपराध होता है इससे, क्योंकि कृष्ण और गोपियों का संबंध इतना दिव्य है कि उसमें भौतिक जो गंदगी है ना उसका लेश मात्र भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी सोच उसके परे जाती नहीं है ना, इसलिए हमें अधिकार भी नहीं है वो सब। और वो सब लीलाएं तो स्वयं से पढ़नी भी नहीं चाहिए, बहुत ही शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से समझने का प्रयास करना चाहिए और उनकी टीकाओं से ही हम, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं उसी हिसाब से हमें समझना चाहिए। तो फिर हम डायरेक्ट से तो फिर भी वो जगह पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अब वो तो हाईएस्ट है। अब जहां पर अगर आपको हाईएस्ट जगह पे पहुंचना होगा तो स्टेप स्टेप आप करके ऊपर चढ़ोगे ना, ऐसा थोड़ा हो गया कि आप आखिरी सीढ़ी पर सबसे पहले पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोले कि ये सब हमारी बहिरंगा बुद्धि, क्योंकि उसमें ये सब आध्यात्मिक चीजें नहीं आ सकती हैं डायरेक्ट से। अब श्री प्रभुपाद जी हमें उस श्लोक के विषय में बता रहे हैं जो कि हम आज पढ़ रहे हैं जन्माद्यस्य। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्रील वेदव्यास जी ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। कौन सी दोनों शक्तियां? एक भगवान की अंतरंगा शक्ति और एक भगवान की बहिरंगा शक्ति, इन दोनों में अंतर बताया है। वे कहते हैं कि प्रकट होने वाली अंतरंगा शक्ति वास्तविक है और जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिकाओं जैसी है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास प्रतीत रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविकता प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है और यह तो उसकी छाया यानी प्रतिबिंब मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चित आकाश में रहते हैं, भौतिक आकाश में नहीं। भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह सत्य किसी अन्य पर आश्रित है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा इंद्र चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। वास्तव में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहां भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान है। बहुत ही सुंदर व्याख्या श्री प्रभुपाद जी की इस श्लोक के विषय में, कि भगवान ने जो बताया है जन्मादि यथोन्वयादि तरतस्यार्थेष्वभिज्ञः स्वरात्, कि ये संसार में जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, और ये भगवान की शक्ति में तीनों गुणों को मिलाकर इस संसार को इतना आकर्षक बनाया हुआ है कि इसमें हालांकि कोई वास्तविकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक लगता है। और ये क्या है? ये तो केवल प्रतिबिंब है, छाया है। इस चीज को ना भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 15 में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। भगवान कहते हैं 15:21, ऊर्ध्वमूला मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। भगवान ने कहा एक पीपल का वृक्ष है जिसकी शाखाएं ऊपर और नहीं जिसकी जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे है। यानी यहाँ पर भगवान ने क्या एक उल्टा अक्ष बताया है, प्रतिबिंब। जिस तरह से अगर हम नदी में किसी जलाशय में देखते हैं ना, तो क्या लगता है जो उसके किनारे पर वृक्ष होता उसकी उल्टी छवि निकलती दिखती है, उसी प्रकार यह संसार में जो कुछ भी दिखता है वो सब अवास्तविक है। उसका कोई भी नित्य स्वरूप नहीं है, सब क्षणिक है, समाप्त होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं वास्तविकता है नहीं। इसी बात को यहाँ पर सत्यम परम धीमहि से बताया गया कि बाकी सब इस संसार में जो कुछ आपको अवास्तविक है फिर भी वास्तविक लग रहा है, लेकिन इस ये सब प्रतिबिंब है, छाया है। और वास्तविकता कहाँ है? ऊपर जहाँ पर भगवान रहते हैं, भगवान के लोक में। मोहयंति यत् सूरया, बड़े बड़े देवी देवता। अब यहाँ पर भगवान ने ये भी बता दिया, श्रील प्रभुपाद ने कितना सुंदर बताया कि बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं जिनमें ब्रह्मा चंद्र इंद्र जैसे उच्चतर देवता भी शामिल है। अब क्या ये सब भी बद्ध जीव हैं, इसीलिए तो भगवान ने कहा मोहयंति यत् सूरया कि बड़े बड़े देवता भी मेरी इस अद्भुत शक्ति को देखकर मोहित हो जाते हैं। अगर वो बद्ध जीव नहीं होते तो यहाँ पर आप कोई भी पोस्ट ले लेते हो ना, बड़े बड़े उच्चतर उच्च से उच्च जगह पर भी चले जाते हो, लेकिन जब तक भगवान आपको अपनी सेवा में एक्सेप्ट नहीं करते ना, भगवान की दिव्य लोक में दिव्य आनंद प्राप्त नहीं करते हो ना, तब तक हम लोग है ना कभी भी मुक्त अवस्था को नहीं, तब तक हम बद्ध अवस्था में ही आएंगे। और आगे श्रभुपाद ने बहुत सुंदर बताया किंतु यह वास्तविक जैसा प्रतीत होता है। अब जो कुछ भी संसार में वो, लेकिन वास्तविकता का अस्तित्व तो केवल वैकुंठ धाम में, जैसे ना धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम्, कि उनके धाम में कोई भी अवास्तविकता नहीं है, उनके धाम में कोई भी भौतिक गुणों का या भौतिक किसी भी चीज का या अशाश्वत कुछ नहीं है, सब नित्य है, इटर्नल है, सत्य है। कहाँ पर? भगवान के धाम में। और यहाँ पर जो कुछ है वो सब असत्य है। जहाँ भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान है, वह गोलोक वृंदावन धाम जो है वो ऊपर है, लेकिन उसकी जो छवि है संसार में जो कुछ भी आनंदमय दिखता है ना, वो सब कैसे है? बहुत सुंदर लगता है मुझे, जैसे छवि होती है ना, जैसे आपके पास एक खूबसूरत कोई भी खूबसूरत चीज हो, खाने की हो, अगर आपके पास है और दिख रही है, बहुत दूर रखी हुई है लेकिन मिरर में दिख रही है, तो आप क्या सोचोगे? इसको मैं खाऊंगा और आनंदित हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि वो मिरर में है, अब आईने में है, दिख रहा है, उसका खाली छवि दिख रही है, आप उसको कितना भी सर फोड़ो, अपना मार डालो, लेकिन उसका दिव्य आनंद, उसका जो रियल टेस्ट है वो तब तक आपको नहीं आएगा जब तक वो चीज आपको रियल में नहीं मिलेगी। तो इस संसार में भी जो हम हर किसी में, हर व्यक्ति में, हर शय में, हर जगह पर प्रेम ढूंढ रहे ना, तो वो प्रेम हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि इस संसार में है नहीं ना, इस संसार में केवल उसकी छाया मात्र है। तो ये जो प्रेम, प्रेम का असल टेस्ट, प्रेम का रियल रसास्वादन जो हमें प्राप्त होने वाला है, उसका रियल सोर्स केवल कृष्ण है। केवल कृष्ण से ही प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, कृष्ण साक्षात प्रेम का स्वरूप है, तो वही सत्य है, वही से सत्यता प्रकट होती है। तो यहाँ संसार में बड़े हम कितनी ही स्ट्रगल क्यों ना कर लें, कितना ही कोशिश कर लें, संसार के साथ अपना सर फोड़ेंगे मगर आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर यानी शिल्पी निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में होता रहता है। वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। अब यहाँ पर भगवान ने बताया ना, जन्मादस्य यतोन्वयादि तरसस चार्थेश्व विज्ञा स्वरा। चार्थेश्व मतलब अब बलि, जैसे कोई बड़ा कारीगर होता है ना, बहुत बड़ा अगर कोई फैक्ट्री का बॉस होता है तो भले बहुत बड़ा इंजीनियर होगा, लेकिन जो भी कार्य करते हैं ना फैक्ट्री के, वो तो सर्वेंट्स करते हैं ना, वो खुद तो जाके नहीं करता है, उसके जो भी वर्कर होते हैं वो करते हैं, लेकिन जो भी कार्य हो रहा होता है वो उसके निर्देश अनुसार हो रहा होता है, जो उन्होंने जो है ना बताई होंगी ना, जो भी उनको बताया होगा कि भाई इसके हिसाब से रूल्स जो भी होंगे, जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो सब तो वही बताएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वर्कर्स अपनी मर्जी से करेंगे और है ना जो रियल इंजीनियर बड़ा होगा उसको कुछ खबर ही नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे अगर कोई इंजीनियर कोई बहुत बड़ा होगा, वो कोई बिल्डिंग बनाता है या कोई भी चीज बनाता है, तो उसमें वो खुद बैठ के ईंटें सीमेंट जार ये सब मिला मिला के वो थोड़ी एक एक पत्थर को रख रहा होता है, लेकिन जो भी कार्य हो रहा होता है वो किस उसकी ही निर्देशन के अनुसार हो रहा, उसके ही ना जो भी उसने आदेश बताए होते ना उनके अनुसार होता है। उसी तरह यहाँ पर देखो श्री प्रभुपाद जी कितना बता रहे हैं अच्छा कि किंतु वह उसके कोने कोने से परिचित रहता है, उसको सब कुछ पता होता है। चार्थेश्व विज्ञा स्वराट, श्री प्रभुपाद जी इसी श्लोक को समझा रहे ना जो शुरू वाली लाइन लिखी हुई है, तो वो सब कुछ जानता है लेकिन उसके विषय में फिर भी, और सारा कार्य उसी के निर्देशन से होता है। वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य में के विषय पर हर बात जानता है, वो डायरेक्ट से जानता है या इनडायरेक्टली उसको सब पता होता है कि ये यहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार भगवान भी दृश्य जगत के परम इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। विज्ञ अभिज्ञ जो शब्द है ना उसका मतलब होता है जानने वाला। ऐसा नहीं भगवान अपने गोलोक वृंदावन नाम में आराम से बैठे हुए हैं, वहां पर तो नित्य जगत है और यहाँ पर क्या हो रहा है भगवान मुझे पता नहीं क्या हो रहा है संसार में, मुझे तो कुछ खबर ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। भगवान अभिज्ञ रहते हैं पूर्णतया, हर चीज से उन अवगत रहते हैं, उनको सब कुछ खबर होती है कि संसार के किस कोने में मेरा कौन सा नालायक बच्चा कौन से काले करतूत कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग कैसे बेवकूफ होते हैं कि हम देखो अपराध करते हैं ना, हर कोई जीव का स्वभाव होता है अपराध करना, गलतियां करना होता है ऐसा, लेकिन लोग अगर कोई बैठे होंगे ना, जैसे अगर कोई चोर होगा ना, जैसे हृदय में चोरी का होगा, आजकल तो है ना गन लेकर आते, लेकिन अगर थोड़े साधारण छोटे मोटे चोर होंगे ना, वो उनको कोई चीज चोरी करनी होगी, जैसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे ना, फिर नहीं करेगा, कोई देख तो नहीं रहा, या फिर चोरी के अलावा भी जो भी और भी गंदे काम करने होते हैं ना, जैसे कोई गलत कार्य, अभी माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोई भी गलत कार्य करते ना, तो वो सोचते हैं कि मुझे कोई देखे नहीं, बस ये मैं काम कर रहा हूँ, खाली किसी को पता नहीं चले। लेकिन कितना बेवकूफ होता है मनुष्य कि हाड़ मांस के जो ये शरीर है उनकी उपस्थिति में गलत कार्य नहीं करता, लेकिन वह जो भगवान है वो तो अभिज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, ये कभी सोचता भी नहीं है कि वो तो देख रहा है मुझे, और रियल पनिशमेंट तो वही देने वाला है, लेकिन फिर भी भगवान से नहीं डरता, मनुष्य से डरता है। कितनी बेवकूफी है। वो कृष्ण जो कण कण में व्याप्त हैं, जो हर जीव के हृदय में बैठे हुए हैं, उनसे उनकी कोई फिक्र नहीं करता कि वो भी तो देख रहे हैं, लेकिन मनुष्य से डरता रहता। और आगे श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि इसी भगवान इसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे इंजीनियर बैठा होता है इसके सारे वर्कर कार्य करते हैं लेकिन उसको खबर होती है, उसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के परम इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित हैं, भले ही सारा कार्य देवताओं द्वारा क्यों ना संपन्न हो रहा हो। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है, हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक सफुलिंग उन्हीं से अद्भुत होते हैं, और जो कुछ भी इस जगत में उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा तथा पराशक्तियों की ही अंतः क्रियाओं से होता है, जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भासित होती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान खुद नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़े इंजीनियर है ना, तो उनके सारे जो सेवक हैं, जो देवी देवता हैं, उनके जरिए से कार्य करवाते हैं। जैसे इंद्र वर्षा देता है, अनाज देता है, चंद्र और है ना सूर्य रोशनी प्रदान करते हैं, और अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग कार्य दिए हुए हैं, लेकिन वो सब कुछ जानते हैं। और उसके अलावा जो बहुत ही सुंदर बात है वो ये है कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा से लेकर शुद्र चींटी तक सब अपने अपने कर्मों के अनुसार कार्य करते हैं, जो उन्हें ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं। बड़े बड़े देवता भी भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। और बता दें श्री प्रभुपाद ने कि संसार में जो भी भौतिक और आध्यात्मिक है वो सब उस सब का उद्भूत करने वाला भगवान है। और दो शक्तियां भगवान की, परा और अपरा, जिनके विषय में भगवान ने सातवें चैप्टर में श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7, 4, 5, 6 इनमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। भगवान ने कहा भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृति है। भगवान ने कहा 8 मेरी शक्तियां अपरा हैं। और उसके आगे भगवान ने कहा अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परा जीवभूता महाभाहो ययेदं धारयते जगत्। और इसके अतिरिक्त मेरी एक दूसरी भिन्ना प्रकृति है जिसका नाम परा प्रकृति है, जिसमें जीव भूता महाबाहो ययेदं, इसमें जीव समस्त जीव प्राणी आ जाते हैं जो कि इस भौतिक जगत का विदोहन करते हैं। तो यहाँ पर श्री रूपा जी कहते हैं परा और अपरा शक्ति की ही अंतक्रिया है। जो कुछ भी हो रहा है ये दो पराशक्ति और अपराशक्ति यानी भौतिक और आध्यात्मिक के मिलाप से ही होता है। जो कुछ भी इस संसार में आता है इन्हीं चीजों से बनता है। बुद्धि यूज होती है और है ना ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो भगवान ने दिए हैं वो यूज होता है, और जीव के अंदर आत्मा बैठी हुई होती है, वो सक्रिय है, तो उसके आदेशानुसार ही हर कोई कार्य कर रहा है। जो कुछ भी इन्वेंशन हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये परा और अपरा प्रकृति के मिलाप से ही हो रहा है। इस चीज को हमने बहुत अच्छा समझा सातवें चैप्टर में। और आगे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो परम सत्य भगवान से ही उद्भासित है, यानी जो कुछ भी हो रहा है क्योंकि परा और अपरा शक्ति भगवान की है, तो इसका मतलब होता है वह सब भगवान के कारण ही हो रहा है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है। और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। अब वो भले H2O यूज करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाता है, हालांकि वो दोनों क्या है, वो गैस है, और उन दोनों को मिला करके बनता है जल बनता है। तो ये कर रहा कौन है, जीव कर रहा, लेकिन क्यों कैसे कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य कर रहा है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। ये सारा का सारा कार्य जो है वो, और दूसरा ये कि सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले कौन है, भगवान ही है। और वह रसायन वेत्ता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होती है। भगवान प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, वे सूक्ष्म बातों को जानने वाले हैं तथा पूर्ण स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्र शब्द जो है वो फर्स्ट लाइन का लास्ट शब्द है, जैसे स्वराट। बड़े से बड़ा जीव कौन है संसार का, ब्रह्मा जी, लेकिन हमने क्या पढ़ा ब्रह्मा से लेकर शुद्र चुंडी तक कोई स्वतंत्र नहीं है। लेकिन यदि कोई स्वतंत्र है तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उनके विषय में बता रहे हैं कि भगवान प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, अवगत हैं। अभिज्ञ शब्द यहाँ तक खत्म किया और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वे सूक्ष्म बातों को भी जानने वाले तथा स्वतंत्र हैं, वो सब कुछ जानते हैं और बिल्कुल स्वतंत्र हैं। उनको अपने कार्य करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवता हो या कोई भी जीव हो वो भगवान की सहायता या भगवान की शक्तियों को यूज करे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान है, उन्हें किसी और से किसी और की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वतंत्र है। उनकी तुलना सोने की खान से की जा सकती है, जबकि विभिन्न रूप वाले दृश्य जगत सोने की बनी हुई विविध वस्तुओं यथा सोने की अंगूठी, हार इत्यादि के समान होती है। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान है, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। अतः परम सत्य एक साथ समान तथा भिन्न है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद शक्ति। अब देखो, सोने की खान में और सोने के बने हुए छोटे छोटे जेवर जो होते हैं ना, जैसे ज्वेलरीज होती हैं, अगर देखा जाए तो उनकी क्वालिटीज वही होती हैं, लेकिन क्वांटिटी में कितना फर्क होता है। क्वालिटीज फिर भी वही होती हैं, सोने में जो होता है वही वो उसमें भी होता है, लेकिन फिर भी वो इतनी छोटी हो, खान पूरी सोने की हो, यानी कि पूरा एक सोने का खान का मतलब होता है ना, जहां पर मतलब अनलिमिटेड वो चीज होती है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के समान ही होते हैं, क्वालिटीज वही होती, किंतु खान का सोना परिमाण में भिन्न है। क्या उसकी क्वांटिटी बहुत खान में बहुत ज्यादा। अतः परम सत्य एक साथ समान तथा भिन्न है, उनके बराबर भी है और उनसे अलग भी है, क्योंकि उनकी जैसा क्वालिटीज उसके अंदर है लेकिन उनकी जैसी क्वांटिटी नहीं है, और परम सत्य के तुल्य पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, उनके बराबर कुछ हो नहीं सकता, किंतु साथ ही परम सत्य से भिन्न कुछ नहीं होता। अब जो कुछ भी है संसार में भगवान की शक्ति है, भगवान ही है, भगवान ही एक अलग रूप में हमको दिख रहे हैं अपने अंशों के रूप में, लेकिन अब भगवान से अलग कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि भगवान के बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, भगवान के जैसा कुछ नहीं है और उनसे अलग कुछ नहीं है। तो यही फिलोसफी जो है वो चैतन्य महाप्रभु समझाए अपने अचिंत्य भेदाभेद तत्व में। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक निगण्य चींटी तक सारे बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। अब जो कुछ भी यहाँ पर देखो, ये कैसे निर्माण का कार्य करते हैं, देखो जैसे ये संसार में जो भी आता है ना, अपने जैसा कोई पहले उसका क्या होता है, छह उसके अंदर सब तब्दीलियां आती हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं, वो पहले पैदा होता है, बड़ा होता है, और उसके बाद क्या करता है, अपने जैसा कुछ बनाता है, अपने जैसी रिप्रोड्यूस करता है, अब उसमें से कुछ पैदा होता है, और उसके बाद वो फिर क्षीण होता है और फिर मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि हर कोई उत्पन्न कर रहा है तो क्या सोच रहा है कि भाई मैंने इसको पैदा किया, अगर कोई बाप माँ सोचती है कि मैंने पैदा किया, मैं सृजन करता हूँ, और चुंटी चुंटी को जन्म देती है, मतलब जानवर जानवर को जन्म देते हैं, मनुष्य मनुष्य को, तो कुछ न कुछ तो वो उत्पन्न कर रहे हैं ना, कुछ न कुछ तो क्रिएशन हो रही, सृजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ब्रह्मांड के, संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा, यानी सबसे बड़े सृजन करने वाले कौन है, ब्रह्मा जी से लेकर एक निगरण चुंटी तक बद्ध जीव सृजन के कार्य कर रहे हैं, कुछ न कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब जब तक भगवान की, अब कोई भी अपनी इच्छा से, अब आप अगर सोचते हो मनुष्य मनुष्य को तो जन्म देता है, लेकिन आप सोचते हो कि मेरा बेटा ना महात्मा गांधी बने, तो वो नहीं बनेगा, जो आपके कर्मों के अनुसार जो आपने काम किए होंगे वैसा ही मिलेगा आपको, कोई अलग से ऐसा नहीं, हम अपनी तरफ से निर्माण नहीं कर सकते, अपने भाग्य को नहीं बना सकते, स्वतंत्र नहीं है। जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है ना, जो कुछ हमने कर्मों में किया है वही हम प्राप्त करते हैं। कोई लोग, हम कितनी कोशिश करते हैं कि भाई मेरी इससे शादी होनी चाहिए, कोई कोई लोग बोलते हैं ना इससे शादी नहीं होनी चाहिए, इससे होनी चाहिए, लेकिन आपने जो काम किया होगा पिछले जन्म में वही आपको आज रिजल्ट मिलेगा। ऐसा थोड़ी होगा कि जिससे आप चाहोगे वही आपको मिलेगा, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये सब संबंध बनना है। जिस तरह से बच्चा आप अपनी मर्जी से नहीं चाह सकते ना, उसी तरह से पति भी आप अपनी मर्जी से नहीं चाह सकते। जिस तरह माँ बाप आपको अपनी आपकी मर्जी से नहीं मिले ना, उसी तरह से संतान आपको अपनी मर्जी से नहीं मिलती। जो कुछ आपने जिस जिसके साथ किया है वो भरने की जगह है यहाँ पर, ये संसार जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आपको मिले और दूसरे कर्म करो इसके लिए, तो जो हो रहा है आपको उसको होने दो, और हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट अच्छा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छा बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमान शुचिमतांग ये है योगो भ्रष्टो विजायते। भक्ति करो और कुछ नहीं करो। भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। इसमें आज तक तो तुम्हें जो कुछ मिला है वो अनित्य है, सुख कुछ नहीं मिलेगा, तुम भले कितने भी स्ट्रगल कर दो संसार में, सुख नहीं रखा है मैंने, अब आ गए हो तो काम करो एक, मेरा भजन करो ताकि नेक्स्ट तुम्हें सुख मिल सके, आगे जीवन में तो मिले, अब तक नहीं मिला। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, भले आज नहीं मिला, कोशिश करता हूँ कल मिलेगा, ऐसे कोशिश करते 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 ये जन्म भी जानवरों की तरह गुजार के खत्म कर देते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते और फिर नेक्स्ट जन्म में वही दुख दुख दुख। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन भौतिकता वाली व्यक्ति क्या सोचते हैं, व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई और सृष्टा नहीं है, यह माया या भ्रम कहलाता है। अब जो हम क्या सोचते हैं, हम लोग ही कर रहे हैं है ना, लेकिन ये भ्रम है। अल्पज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परे देख नहीं पाता और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः आकार ग्रहण करता है। किंतु श्री वेद व्यास जी ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है, चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु का उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं होती है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ऐसा नहीं है कि ये संसार में जो कुछ हो रहा है बस ऐसे ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। जैसे संसार में जो भी हर चीज देखो कितना अच्छे तरीके से संतुलित तरीके से हो रहा है, सुबह होती है रात होती है और है ना ऋतुएं अपने समय पर आती हैं, गर्मी सर्दी और पुष्प खिलने की जो बाहर की ऋतु होती वो सब सब अपने समय से आते। तो भौतिकतावादी बुद्धि होती है वो बस आने वाली। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, अभी मैंगो का सीजन है उसके बाद ये सीजन आएगा ये सीजन आएगा, ये नहीं सोचते कि ये सारा कुछ किसकी अंडर में हो रहा है ना, ये माइंड में आता ही नहीं। बस अभी गर्मी है तो ऐसा लगता है जून जुलाई में गर्मी है, फिर अगस्त में सर्दी आ जाएगी, आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली थोड़ी आएगी, ये किसी न किसी के निर्देश परम बुद्धि के श्रेष्ठ बुद्धि के आदेश अनुसार होता है और स्वतः आकर सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो रहा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्योंकि भौतिकवादी क्या सोचते हैं कि ऐसा ये खुद ब खुद हो रहा है बस ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पर श्रील वेदव्यास जी क्या बता रहे हैं कि इस श्लोक में इसका खंडन किया गया है, चूंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु का उद्गम है। ये जैसे बताया शुरू की लाइन में जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतस्याथेष्व विज्ञः स्वराट, वो स्वतंत्र हैं और वो खुद कार्य कर रहे हैं, बाकी कुछ भी स्वतंत्र नहीं है और वो परम सत्य परम सत्यम परम धीमहि उनको ही प्रणाम किया, क्योंकि सब कुछ जो कुछ हो रहे हैं वो उनके आदेशानुसार हो रहा है। अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती, जो कुछ आदेश मिलता है वही स्वतंत्र, हम नहीं स्वतंत्र, स्वराट तो खाली केवल परम सत्य है। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है, इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, अतः इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानने वाले हैं। अब देखो इस आपके शरीर में, आपका इतना बड़ा शरीर है ना, उसके शरीर में एक एक जरा सी अगर कहीं पर सुई चुभती है तो आपको पूरे शरीर में दर्द होने लगता है ना। अब हमें इतना ही पता है कि ये शरीर मेरा है, तो उससे हम पूरा हर वक्त अवगत रहते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, नींद आ रही है, पाँव में ये हो रहा है, जो भी हो रहा होता है तो पूरे शरीर को फौरन से पता चलता है। उसी तरह ये जो विराट जगत है ना, ये पूरा विराट जगत भगवान का देह है, भगवान का शरीर है, भगवान के शरीर के अंश है, ये पूरा का पूरा विराट जगत भगवान से। भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया था ना, तो उसमें एक एक कण एक एक चींटी हर चीज थी, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है, तो यह विश्व रूप भगवान का था। तो अब भगवान के शरीर में जहां पर भी कुछ हो रहा है तो क्या है, भगवान को खबर नहीं पड़ेगी क्या उसकी? तो भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अभिज्ञ स्वराट, उनको सब कुछ पता चल जाता है और वो स्वराट है, स्वतंत्र है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि श्रुति मंत्र में ये भी कहा गया है कि परम सत्य परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। श्रुति मंत्र यानी जो वेदों के मंत्र है उसमें बताया कि परम पूर्ण या ब्रह्म, समस्त वस्तुओं का चरम, वो ब्रह्म से ही सब कुछ आए, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत हुई है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में बताया ना कि मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। ऐसे प्रत्येक वस्तु ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उस ब्रह्म को मैं गर्भ प्रदान करता हूँ, उन्हीं के द्वारा पालित और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है, यही प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र में इसी की पुष्टि हुई है, यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आगार में वे प्रवेश करती हैं वह परम सत्य का या ब्रह्म है। अब यहाँ पर संसार में बताया जाता है शास्त्रों में कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ होता है वो ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्मा जी सब कुछ प्रकट करते हैं और अंत में उसी में सम्मिलित हो जाता है, परम सत्य में या ब्रह्म में सम्मिलित हो जाता है। अब भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, कि जितने भी ग्रह मंडल हैं, प्लैनेट्स जितने हैं, उनका उद्गम क्या है, सूर्य है। किंतु सूर्य का उद्गम नहीं बता सकते, कि सूर्य भी तो किधर से आया होगा ना, सूर्य कहाँ से आया। यहाँ पर चरम उद्गम की व्याख्या की गई है। वैदिक वाङ्मय के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं परम सृष्टा नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान ने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि आदि पुरुष होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा जीव नहीं था। अब यहाँ पर जो तीसरी लाइन है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, उसके विषय में प्रभुपा जी बता रहे कि ब्रह्मा जो आदि जीव है उनको भी ज्ञान किसने दिया, हृदय के अंदर किसने दिया, भगवान श्री कृष्ण ने। यहाँ सत्यम परम धीमहि, जो सत्य भगवान श्री कृष्ण ओम नमो वासुदेवाय, उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कोई चाहे तो तर्क कर सकता है कि जब ब्रह्मा जी आए थे उस टाइम पर वो तो आदि जीव है, पहले जीव है, तो फिर उनको कोई और ज्ञान कैसे देखा, उस टाइम पर और तो कोई था ही नहीं, कोई दूसरा जीव नहीं था। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया जिससे वे सृजन कर सकते। लेकिन गौण सृष्टा का मतलब होता है ब्रह्मा ने संसार को सृजन किया, लेकिन ब्रह्मा को सृजन करने वाले भगवान है। तो जो सुपर सृष्टा है वो कौन है, भगवान है। और पहले फर्स्ट क्रिएटर भगवान है जिन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया, और ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएटर है क्योंकि ब्रह्मा जी ने सारे संसार को बनाया, तो इसको गौण सृष्टा कहते हैं, सृजन कार्य कर सकते। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है वह परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। वेरी गुड। श्याम पश्चिता प्रभुपाद जी ने एंड कर दिया बात को कि जो कुछ कार्य हो रहा है संसार में उसको परम बुद्धिमान एक है, जो बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि 7.12 में श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि जो संसार में बुद्धिमान काम करते ना उनको बुद्धि मैंने दी है, मेरे बुद्धि के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को सूचित करने वाली सर्जक शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव शिलव्यास यानी कि जो कुछ भी संसार में यहाँ पर पदार्थ और जीव को मिलाकर जो भी सृष्टि होती है उसका प्रकृति का निरीक्षण वही करते हैं, भगवान ही उसको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अतएव श्री व्यास देव ब्रह्मा की नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर देखो भगवान ने क्या, वेद व्यास जी ने क्या कहा, मैं उस भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ जो कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। अब ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया है उन्होंने, किसको, ब्रह्मा के सृष्टा को प्रणाम किया है। अभी तो परमेश्वर की पूजा करते हैं वो जो ब्रह्मा जी हैं, उन वो भी भगवान की पूजा करते हैं और ब्रह्मा जो कार्य करते हैं उनका मार्गदर्शन भी वही करते हैं। तो फिर वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी को नहीं बल्कि उनके सृष्टा को प्रणाम किया। इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है, यह दो शब्द परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। अभिज्ञ का क्या मतलब होता है, जानने वाले। स्वराट का मतलब होता है स्वतंत्र, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आम इंसान और जो भगवान है उनके अंदर अंतर इसी से समझ में आता है। और कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है, जीव नहीं हो सकता। जीव सब कुछ नहीं पता होगा, जीव को कुछ पता होगा तो अपने शरीर के विषय में पता होगा, सृष्टि के विषय में पता नहीं होगा। और स्वराट नहीं है क्योंकि अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है, जैसे कार्य उसने पहले जन्म में किए उसके फलस्वरूप जो उसको करना है वही कर रहा है। वो अपनी स्वतंत्रता उसकी इतनी है कि नया कर्म कर सकता है, लेकिन फिर भी पिछले जन्म के अनुसार उसको सब कुछ मिलता उसको वही है जो पिछले जन्म में उसने कार्य किए हैं। अर्थात कोई भी जीव ना तो पूरी तरह से जानता है ना ही पूर्णतः स्वतंत्र है। यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं तो करोड़ करोड़ वर्ष तक भगवान का ध्यान करते हैं और फिर उनको यह ज्ञान प्राप्त होता है कि किस तरह से सृष्टि करें। तो फिर आइंस्टीन जैसे महान विज्ञानी यानी साइंसदान है कोई, तो उनके विषय में कहा, उनके बारे में क्या कहा जाए कि ना उन्होंने, जब ब्रह्मा जी भी भगवान के निर्देशन अनुसार कुछ नहीं कर सकते तो हमारे जैसे साधारण जीव उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। विज्ञानियों का मस्तिष्क किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। अब ऐसा जो बुद्धि है जो ये कार्य करने की है, वो कोई विज्ञानी आज बोलो चलो ठीक है तुम्हारे पास बुद्धि है तुम्हारी है ना तो तुम ऐसी दूसरी बना के दिखाओ, किसी और के अंदर भी ऐसी डाल के दिखाओ, वो नहीं कर सकता। तो जब इतना बड़ा विज्ञानी भी वो कार्य नहीं कर सकता तो आज के जो भौतिक नास्तिक है वो उनके बारे में क्या कहना, यानी कि तो फिर उन नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, भगवान के विषय में कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, भगवान कुछ है ही नहीं, हम सब कुछ अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, हम ही भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं वो समझते नहीं है कि ये सब कुछ भगवान से आया है, लेकिन वेद व्यास जी बता रहे हैं कि जो कुछ है वो भगवान ही है, भगवान के तुल्य कुछ नहीं, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। इसीलिए भगवान को प्रणाम करना ही जीव मात्र का प्रथम कर्तव्य है। आगे हम कल पढ़ेंगे, यहाँ पर आप निशान लगा दिया करो जहां से हम पढ़े ना, ताकि हम नेक्स्ट कल पढ़े तो वो जगह आपको याद रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।